शालिनी तेज आवाज में कहने लगी। एक दिन वो अपने आंसुओं से इस घर की चौखट गीली करेगी। मैं उसे रोते हुए देखना चाहती हूँ, बिल्कुल अकेली, बेबस, जिसे कोई सहारा ना दे। सुमित्रा की आवाज में अब कड़वाहट भरने लगी थी। उसकी चाल देखी है तुमने? जैसे खुद को किसी रानी से कम नहीं समझती। आखिर कौन है वो? कोई खानदानी नाम नहीं, कोई तहजीब नहीं, बस एक चुप्पी और कुछ आंसू लेकर वो इस हवेली में घुस आई। शालिनी हंसी, लेकिन वो हंसी चुभन से भरी थी। वो सोचती है कि चुप रहकर ये घर जीत लेगी। मैंने उसके जैसी कई देखी हैं आंटी। ऐसी लड़कियां चुप रहती हैं ताकि लोग उन्हें सहनशील समझें, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर इंसान को अपने हिसाब से मोड़ने लगती हैं। अखिल जैसे लोगों को ये मासूम चेहरा बहुत भाता है। सुमित्रा ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर थामा। मेरे बेटे की पसंद पर कभी शक नहीं हुआ मुझे, लेकिन आज रैना को देखकर लगता है मेरी परवरिश में कहीं चूक हो गई। शालिनी ने अब एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, चूक तो अब नहीं होनी चाहिए, अब वक्त है उसे उसकी जगह दिखाने का। वो जो भी है अखिल की बीवी नहीं है, वो बस एक गलती है जो जल्द ही सुधारी जाएगी। सुमित्रा की आंखों में कठोर चमक आई। मैं उसे इस घर की बहू नहीं मानती, ना उसकी चाल इस घर की है, ना उसका बोल। जो लड़की निगाहें झुकाकर नहीं चलती, वो राजवंशी की बहू कैसे बन सकती है? शालिनी आगे झुकी। और उसकी हिम्मत तो देखिए, ठीक से आपके पैर भी नहीं छूकर आशीर्वाद नहीं लिया गया और आपको देखा तक नहीं, ये है उसके संस्कार? सुमित्रा ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। वो नहीं जानती कि मैं इस घर की रीढ़ हूं, मेरे बिना ये हवेली अधूरी है, और वो तो बस एक परछाई है जो जल्द ही मिट जाएगी। शालिनी की आवाज में अब खौफ नहीं था, बस पक्का यकीन था। आंटी, आपने मुझसे कहा था कि वक्त आने पर मैं ये लड़ाई लड़ूं, तो सुनिए, अब मैं उसे न सिर्फ इस घर से बल्कि अखिल के दिमाग से भी मिटा दूंगी। मैं उसे उसके ही बिस्तर पर बैठकर पराया बना दूंगी। उसे खुद से नफरत हो जाएगी। सुमित्रा कुछ पल चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, तुम्हें उसके आंसू नहीं चाहिए, तुम्हें उसका टूटना चाहिए, है ना? शालिनी की आंखें छलक उठी, लेकिन उसमें प्रेम नहीं, धुआं था। कभी आपने सोचा है आंटी कि जब एक लड़की जो सारी उम्र किसी के होने का इंतजार करे और एक दिन किसी और को उस जगह पर बैठा देखे, तो उसके दिल में क्या गुजरती है? तुम सिर्फ इंतजार ही नहीं कर रही थी शालिनी, सुमित्रा की आवाज में पहली बार थोड़ा स्नेह था। तुम उसके लिए जी रही थी, और उस जीवन में अब रैना का नाम आ गया, ये मैं नहीं सह सकती। शालिनी ने आगे बढ़कर सुमित्रा के हाथ थामे। आपने मुझे माँ जैसा स्नेह दिया, अब मुझे आपसे एक आखिरी मदद चाहिए। मुझे रैना से वो सब छीनने दीजिए जो उसने मुझसे चुराया है। सुमित्रा कुछ देर तक चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, अगर वो कल सुबह की पहली किरण भी इस घर में देखती है, तो ये मेरी हार होगी, और मैं हार नहीं मानती शालिनी, इसलिए आज रात से ही ये युद्ध शुरू होता है। शालिनी की आंखें दमक उठी। तो तय है, अब रैना को हर दिन उसकी गलती का एहसास होगा। मैं उसे वो चैन नहीं लेने दूंगी जिसे उसने मेरी सांसों से छीना है। सुमित्रा की नजरें अब झूमर पर जा टिकी, जैसे वहां से किसी पुरानी लड़ाई की प्रेरणा मिल रही हो। कल सुबह की पूजा में तुम्हारे लिए मेरी साड़ी रखी होगी, तुम बैठोगी मेरे साथ बहू बनकर, और रैना बस देखेगी। शालिनी ने सिर झुकाया, लेकिन उसमें सम्मान नहीं, बस संतोष था। रैना को हर रिवाज पर गैर महसूस कराना है, हर तीज, हर व्रत, हर पारिवारिक रस्म, उसके लिए जंजीर बनेगी, और हम उस जंजीर के हर ताले को कसते जाएंगे। सुमित्रा ने अब दीवार पर लगे पुराने राजवंशी वंश की तस्वीर को देखा। जब तक मैं इस हवेली में सांस ले रही हूं, उस लड़की को शांति नहीं मिलेगी, और अगर वो सोचती है कि उसकी चुप्पी उसे बचा लेगी, तो वो भूल रही है कि ये घर उसकी चुप्पी से नहीं, हमारी आवाजों से चलता है। शालिनी ने अब अंतिम बार कहा, मैं उसे रोता देखना चाहती हूं आंटी, इस घर के आंगन में, जिसे उसने मेरे ख्वाबों से छीना है। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, पर वो सन्नाटा अब एक खामोश युद्ध की दस्तक था, किसी तूफान से पहले का आखिरी शांत लम्हा। उसी वक्त हवेली के बाहर रसोई की सीढ़ियों से एक छाया गुजर रही थी। घर में से ही कोई शायद कुछ सोचते हुए देर रात पानी लेने निकला था। लेकिन उस कमरे के पास से गुजरते हुए उसके कदम रुक गए। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर की हवा भारी थी। शब्द नहीं सुनाई दिए, पर आवाजों की धार ने उसे काट दिया। उसने अपनी हथेली मुट्ठी में कस ली, फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे लौट गया वो जो कोई था।